نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روح القران آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 15 15th پارہ سبحان الذی یہ پارہ سورۃ بنی اسرائیل سے شروع بھی ہوتا ہے اور اس کی 111 آیات ہیں اسی سورت کا ایک دوسرا نام ہے جو ہمارے ہاں جو مصحف ہیں اس میں عموماً وہی استعمال ہوتا ہے اور اس کو سورت بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں سورت اسرا کہنے کی وجہ پہلی ہی آیت ہے جو بھی آئے گی اور سورت بنی اسرائیل کہنے کی وجہ دوسری تیسری آیات سے لے کر پہلا رکوع اور اسی طرح سے آخری رکوع اس میں دوبارہ ایک بار بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار یعنی قوموں کے عروج اور زوال کا قصہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آج ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے ہے آیت نمبر 1 واقعہ معراج زمینی سفر کا بیان یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا وہ دو حصوں پہ محیط تھا ایک مکہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ جس کو آپ کی میری زبان میں کہتے ہیں کہ بائی روڈ طے ہوا اور اسی کو اسرا کہتے ہیں اور اسرا کا لفظ بھی رات کے سفر کے لیے آتا ہے پیچھے ہم بنی اسرائیل کے ناطے سے بھی پڑھ چکے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا نسری عبادی یا نسری بھی عبادی تو بہرحال لفظ سیر سارا یسیرو یہ ہے تو سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف جس کے ارد گرد کو برکت دی تھی تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اسے خوبصورت آیت میں اللہ نے بہت ساری باتیں بتا دی پہلی تو بات ہے لفظ سبحان اللہ کی تعریف پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عبد کہا گیا آپ یہ انداز قرآن پاک میں اور بھی جگہ دیکھیں گے جہاں کوئی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہوئی وہاں آپ کو عبد کہا گیا بالکل اگلی سورت کے بھی پہلی آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دوسری بات اس میں جو سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی یہ برکت کیسی تھی دو طرح سے تھی ایک تو آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے اکثر انبیاء اکرام اسی علاقے سے اٹھائے گئے تھے مقصد کیا تھا لِنُرِیَّهُ مِنْ آیَاتِنَا اس ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو اس میں بہت کچھ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا یہ اپنی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ قصہ ہے اور اس پہ لفاظی بھی بہت کی گئی لیکن صحیح احادیث اور روایات سے جو پتہ چلتا ہے یہ کب ہوا اس پہ کئی اقوال میں سے سب سے بہترین رائے جو ہے وہ کیا ہے قیام الحزن جس سال یقے بدیگرے بلکہ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے صرف 3 دن کے فرق پہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ابو طالب باہر کی دنیا میں ایک سہارا تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر کی دنیا میں تو اللہ کے نبی اداس رہنے لگے تو اللہ نے پھر ان کی دل جوئی کے لیے ان کو سفر معراج کرایا یہ بس ایک سمجھنے اور محبت کی بات ہے کہ بچہ بہت روئے تو آپ کہتے ہیں اس کو باہر لے جاؤ یہ بہل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ یہ اب چونکہ 10 نبوی کا تذکرہ ہے اور اب آپ کو مکہ سے نکلنا ہے ہجرت کی راہیں ہموار ہو رہی تھیں تو اس سفر میں آپ کو مدینہ طیبہ بھی دکھایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کا مہجر ہوگا اس وقت اس کا نام طیبہ رکھا گیا لیکن اس واقعے کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بہترین کتاب میرے حساب سے الرحیق المختوم ہے کبھی بھی موقع ملے اپنی تھنگس ٹو ڈو میں لکھ لیجئے 1-1.5 گھنٹے کا مارجن رکھ کر آپ اس کو اس بک میں سے پڑھیے انگلش میں بھی یہ بک موجود ہے سیلڈ نیکٹر کے نام پہ اور اردو میں تو موجود ہی اور اس کے آڈیوز بھی آپ سن سکتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا کیا دیا ہمیں سفر معراج میں سے کیا گفٹ ملا عمومی طور پہ دیکھیے دنیا میں بھی ہوتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے تو کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے کوئی کہیں سے آتا ہے تو لے کے آتا ہے اور کچھ کہتا ہے کہ ہم آئیں گے تو تم کیا دو گے اور جب تم جاؤ گے تو ہمیں کیا دو گے लेकिन ये तो खैर एक रस्म है, रस्मन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोहब्बत के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि एक वक्त और मौके का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती है ना तो फिर मोहब्बत नहीं रहती। रस्म और तोहफे में एक बहुत बड़ा फ़र्क लिख लीजिए, अगर ऐसी बाय द वे बात हो गई कि रस्म में पहले से उम्मीद होती है कि 5 तोले के कड़े तो मिलेंगे ही बेटे की शादी पे, लेकिन रस्म के अलावा अगर आप किसी को अनएक्सपेक्टेडली कुछ दे दें तो वो तोहफा करार पाता है। मेराज के कुछ तहाइफ नोट कर लीजिए। नमाज, क्या हमें नमाज एक तोहफा लगती? और हम सब वो तारीख जानते हैं कि 50 नमाजों से शुरू करके 5 मिली। क्या हम नमाज से इतनी मोहब्बत करते हैं? क्या हम उसको एक तोहफे की तरह दिल से लगा के रखें? आप देखिए कि आपकी नानी दादी या आपके किसी बुज़ुर्ग ने आपको कभी कोई चीज़ दी हो तो आप उसको संभाल लेते हैं। कभी कभी लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं हम आपकी निशानी समझ के उसको रखेंगे। तो नमाज की अहमियत, फिर उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, लिल्लाहि मा फिस समावात वाली आयत को खोले तो उसके साथ ही, यानी ये मेराज के तोहफे हैं। आप कह सकते हैं कि पूरा कुरान ज़मीन पर नाजिल हुआ लेकिन आखिरी 2 आयात आसमान पे उतारी गई। फिर वो कौन सी आयत हो गई? मक्की के मदनी, ये तो अर्शी बन गई हैं, अर्श के ख़जाने में से। तो चूँकि हिजरत से पहले थी तो उन आयात को फिर हम मक्की आयात ही बोलेंगे। और वैसे सूरत बकरा मदनी सूरत है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत मज़मून है। अपने लिए काम लिख लीजिए कि हमने उलूमुल कुरान सीखना। कैसे ये कुरान आज तक हमारे पास पहुँचा? और क्या है, सारी शरीयत ज़मीन पर मिली और नमाज आसमान पर, क्यों? अहमियत है नमाज। फिर अगली बात नोट कीजिए कि नबी को मेराज करवाई 7वें आसमान, बल्कि सिदरतुल मुंतहा तक ले जाकर, और नमाज बंदा मोमिन की मेराज है। यानी आप और मैं नमाज में सर तो ज़मीन पर रख देते हैं लेकिन हमें बुलंदियाँ और इज्जतें मिल जाती हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस सफ़र में और भी तहाइफ मिले थे, लेकिन उसमें से फरिश्तों ने हिजामा करवाने का पैगाम उम्मत के लिए भेजा था। अहादीस से आपको इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तस्बीहात के ज़रिए जन्नत में दरख्त लगवाने का पैगाम दिया था। और इसी तरह तौहीद आलों के गुनाहों की माफ़ी भी आपको मेराज के मौके पे मिली, एक अमल के बदले में 10 नेकियां। यही नमाज वाली हदीस है कि अच्छा 50 ही मिलेंगे अजर में, पढ़ोगे 5 अजर 50 का मिलेगा। तो इससे फिर तौहीद वाले की हर नेकी 10 के मल्टीपल के साथ रखी जाती है। फिर इसके बाद अगली आयात 2 से 8 में, दुनिया में इज्जत दीन पर अमल करने से मिलेगी। इसको समझने के लिए पूरी बनी इसराइल की हिस्ट्री है, वातई न मूसल किताब से लेके लिल काफिरी न हसीरा। ये है वो वजह जिसकी वजह से इस सूरत को बनी इसराइल कहते हैं। कौमों के रूज और जवाल में किताब का बहुत हिस्सा होता है। बनी इसराइल को तौरात के अहकाम मिले, वो चूमने चाटने और दीवारों पे लगाने के लिए नहीं थे, उसके तावीज़ बनाकर गले में डालने के लिए नहीं थे, घोल घोल कर पिलाने के लिए नहीं थी, बल्कि किताबें इसलिए आती हैं कि उस पर अमल किया जाए। बनी इसराइल ने वो नहीं किया जो करना था और वो कर लिया जो नहीं करना था। अल्लाह ने उनकी तारीख़ के 2 अच्छे और 2 बुरे अदवार इन चंद आयात में बयान कर दिए। अब आप और मैं आज क्या करें? तो आयत नंबर 9 से 10 में उरूज के हसूल का ज़रिया कुरान करीम। आज उम्मत मुस्लिमा मशरिक में रहे कि मगरब में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में है या गैर तरक्की याफ्ता, बस एक ज़रिया है आपके मेरे उरूज का। हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहते हैं तो इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये वो कुरान है जो उस तरफ राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। इरेक्ट के मानों में, एक सीधा होता है सीधा, स्ट्रेट, नो, इरेक्ट, अक़वम, क़य्यम, कौम, क़याम। और खुशखबरी दिलाता है मोमिनों को, वो कौन से मोमिन? जो अमल साले भी करते हैं। किस बात की खुशखबरी? कि अन्ना लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और इसके ऑपोजिट भी है, और बेशक जो लोग ईमान नहीं लाते आखिरत पे, हमने तैयार कर दिया उनके लिए दर्दनाक अजाब। क्या पता चला कि इन अल्लाह यरफ़ो बिहाज़ल किताबी अक़वामन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह इस किताब के ज़रिए कौमों को इज़्ज़त देता है। व यदाउ बिही आखरीन, और इसी के ज़रिए कौमों को जवाल देता है। अगर इस आयत की रोशनी में आज की पूरी इंसानियत में से उम्मत मुस्लिमा को देखिए तो ग्लोब पे लिखा हुआ ये जुमला आपको मिलेगा कि आज मुसलमान अपनी तारीख के स्याह दौर से गुजर रहे हैं। कहीं हमारी इज़्ज़त नहीं, कहीं हमारी अप्रोच नहीं, और इलाज के इस कुरान को थाम लीजिए जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने थाम लिया है रूहुल कुरान की सूरत में। अब नियत कर लीजिए कि हमने अब इससे ज़्यादा डिटेल वाला भी पढ़ना है। ये तो हम एक ओवर व्यू कर रहे हैं ना, गो थ्रू करते हैं पारे को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टू दी पॉइंट है, और आपको था कि आपकी एक आयत भी पूरे पारे में से मिस नहीं होती। मेरा इससे कंसाइज दौरे कुरान हो नहीं सकता। जिनके पास वक्त कम है वो इसको सुने, आपकी फ्रेंड्स, आपके साथी, आगे 10 रातें आ रही हैं रमज़ान की, आप ये थोड़ा थोड़ा करके प्लान आउट करके दीजिए, तीन तीन पारे करके 10 दिन में पूरा कुरान सुना दें। ये हर मुसलमान का हक है कि उसको पता चले। आप 3-4 पारे रोज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, 5 से 3 कुरान आपके पूरे हुए कि नहीं, बट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। एक दफ़ा फातिहा से नाज समझ आ गया ना आपका रब क्या कहता है, इससे इंशाल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त और आखरत में भी बुलंदी। फिर आयत नंबर 11 में अल्लाह से भलाई मांगने की बातें हैं। वयदुल इंसानु, और पुकारता है इंसान शर की दुआ जैसे कि खैर की दुआ मांगनी चाहिए। वयदुल इंसानु, इंसान बुराई की भी दुआ ऐसे ही कर लेता है जैसे खैर की करनी चाहिए, और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जल्दबाज है। ये ख़ास तौर पर माओं के लिए बहुत अहम आयत है, ज़रा सा कान रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। असल में इस आयत में बददुआ देने वाले लोगों की मजम्मत है। कभी कभी इंसान जल्दबाजी की वजह से रिएक्शनरी हो जाता है। बच्चे ने तंग किया, आपने उसको बददुआ दी, बेटे ने तंग किया, बेटी ने तंग किया, शोहर ने कुछ कह दिया, बीवी ने कुछ कह दिया, तो बेजारी की हालत में जो बददुआ दी जाती है उससे रोका गया। वालदैन की औलाद के ख़िलाफ़ जैसे दुआ कबूल होती है ना, वैसे बददुआ भी जल्दी कबूल हो जाती है, और कबूलियत के वक्त पर जो दी गई बददुआ है उसका भी उसी तरह असर होता है जैसे दुआ का होता है। और आप कहते हैं कि कुछ दुआएं तो ऐसी जिस पे फरिश्ते भी आमीन कह देते हैं। आज नियत कीजिए, सब्र डालना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। जब भी कोई सताए उसकी हिदायत की तौफीक मांगिए, उसको कही अल्लाह माहदी हूँ, अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, ईमान वाली दे। लेकिन कभी भी बच्चे को बददुआ ना दें। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम्हारी बददुआओं पे तुम्हें पकड़ लूँ तो तुम तो दुनिया में एक लम्हे के लिए ना रहो। उसके बाद आयत नंबर 12 से 15 में इंसान का नाम है अमाल। खूबसूरत तरीन आयात हैं जो इंसान को इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हमने तुम्हारा नाम है अमाल तुम्हारी गर्दन में रखा हुआ है। शुरू में रात और दिन के दो निशानियों के तौर पर आने और जाने की बात है, और दिन की निशानी को हम क्या करते हैं, मुबसिरा, क्लियर, हर चीज़ खुल के नहीं आ जाती। आपने कोई चीज़ देखनी भी हो, 10 लाइटें हो घर में रात को, आप कहते नहीं सुबह देखेंगे, सूरज की रोशनी में देखेंगे, बिल्कुल मुबरहन क्लैरिटी के साथ, और रात में हर चीज़ हो जाती है। ये दो चीज़ें इधर और साथ ही इसमें सालों के हिसाब किताब और हर चीज़ को बयान करने की बात के बाद एकदम इंसान के नाम अमाल की क्यों बात की गई, सोचने की बात है। कुछ लोगों के नाम अमाल रात की तरह स्याह होंगे और कुछ के दिन की तरह रोशन होंगे, जैसे चेहरों के रोशन और स्याह होने की बात है। वकुल्ला इंसान ए नलजम ना हो तो आयरा हो फी नकी, इनको बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 11, 12, 13 साल के इन एंड अराउंड बच्चे होते हैं ना, क्योंकि वो लिख पढ़ रहे होते हैं। तो आप उनको कहें कि बेटा हम एक किताब लिख रहे हैं, इसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स हैं, बहुत ही डिफरेंट एंगल से बात हुई, जिसमें एक ये भी है मेरी किताब और अल्लाह की किताब, और इसी तरह से और भी हम सब एक किताब लिख रहे हैं, हर रोज़ उसका एक सफ़ा पलटा जाता है। आप इसका नाम रख लीजिए किताब ज़िंदगी। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, वो उसमें लिखा जा रहा है। अब तो कंप्यूटर से भी लिखने की आदत हो गई ना लोगों को, ना हाथ में कागज़ ना कलम, फिर भी आप लिख लेते हैं, और अब वो भी कंप्यूटर से आके कि आप बोल रहे हैं आपका सुन के वो लिख रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। आप उर्दू में बोल रहे हैं, आप 2-3 लैंग्वेजेस लिख दीजिए उसमें सेटिंग में, तो वो आपकी उस टॉक को दूसरे लफ्ज़ों में नोट्स ले रहे हैं। हमारे लिए अब क्या मुश्किल रह गया? इस वक्त तक मैंने जितने लफ्ज़ बोले आप में से किसने एक एक लफ्ज़ गिना? और जो ये कहते हैं ना हम आपका एक एक लफ्ज़ लिखते हैं, नामुमकिन है। ये सिर्फ अल्लाह की किताब का एजाज है कि उसको फातिहा से नाज तक एक 7 साल के बच्चे के सीने में भी अल्लाह महफूज कर देता है, वरना मुमकिन नहीं। आपने कितने लुक्मे आज सहरी में खाए या रमज़ान में खाए थे? आप कितने सांस ले चुकी हैं, कितनी ऑक्सीजन आपके अंदर गई? आज जो कंप्यूटर्स ने किसी हद तक आपको काउंट कर दिया, आपका नाम माल वो सब कुछ काउंट कर रहा है, इकरा किताबक। अब होता क्या है कि हर रोज़ सुबह होकर जब होती है ना, तो उसका एक नया सफ़ा पलट दिया जाता है, बिल्कुल ब्लैंक प्लेन, और आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखे। सो सो के गुजार दें, खा खा के गुजार दें, लड़ लड़ के गुजार दें, शिकवों में गुजारते हैं, शुक्र में गुजारते हैं। कुछ का तो आधा दिन खाली गुजरता होगा जी, ये तो सो रहे थे, असर के बाद ही उठे क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था। आपने फजर नहीं पढ़ी, जोहर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, आपका रोज़ा क्या हुआ? डाइट शायद हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होनी क्योंकि आपने उसके बाद फिर खा लेना। तो हमेशा शऊर के साथ जिए। एक एक लम्हा आपकी मेरी कमोडिटी है, आपकी मेरी रासुल माल है। हम इससे अपनी आखिरत भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब क्या होगा, ऐसे ही दिनों में से एक दिन होगा, सूरज भी निकलेगा, चिड़िया भी चहचहाएगी, लेकिन वो हमारी किताबें ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। पहले से नहीं बताया होगा, इवन कई साल से बिस्तर पे एड़ियां रगड़ने वाले को भी नहीं पता कि उसके ऊपर वालों को नहीं पता कि आज आपकी मुश्किल आसान हो रही है, और फिर हमसे किताबें ज़िंदगी छीन ली जाएगी। इज़ा मातल इंसान इनक़ते अमलुहु, जब एक इंसान मरता है तो उसका नाम अमल मुनक़ते होता है, यानी किताब छीन ली। छीनने से मुराद ऐसे ही है जैसे इम्तिहान में 3 घंटे पूरे होने पे पेपर छीन लिया जाता है। अब ख़त्म, सब ख़त्म। हाँ, मगर 3 चीज़ें उसके बाद भी अगर आप ऐड कराना चाहें दुनिया में, तो आप देख लीजिए कि पेपर दे दिया जाए तो फिर तो कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी किताबें ज़िंदगी तो बंद है, लेकिन इसमें से 3 चीज़ें तुम्हें बाद में फ़ायदा देंगी। पहली बात है वलदुन सालेहुन यदू लहू बादहू, मरने वाले की नेक औलाद जो उसके बाद नेकियां करती है। तो औलाद जो है ना, ये आपका ऑन गोइंग अकाउंट है। कभी कभी आप अकाउंट बनवा कर भूल जाते हैं, किसी के पास उसका नंबर होता है, वो हर महीने उसमें पैसे डालता रहता है। कभी कोई अचानक डाल दे, कोई किसी अपना हो उसको पता है, वो आपको हो सकता है उसमें गिफ्ट डाल दे, ईद दे दे, है ना, और वो आपके लिए क़यामत तक सदका जारिया बनता रहे। फिर इसी तरह से सदक़तुन जारिया, कोई सदका जारिया का काम कर गए, आपकी कोशिशों से किसी को खैर मिल गई, और सबसे बेहतरीन सदका जारिया जिसका फिर अलग से तीसरे कैटेगरी में जिक्र है, इल्मुन युनतफाउ बादहु, ऐसा इल्म किसी को दे गया जिससे बाद में फ़ायदा उठाया गया। आज भी आप देखिए कि इमाम बुखारी के थ्रू जो इल्म मिला, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हदीस मिली, कोई उनके अजर को काउंट भी कर सकता है? अगर अबू हुरैरा ने चंद दिन भूख सह भी ली तो क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उनके लिए सदका जारिया बनाया। तो इस हदीस को सुनकर दुआ कीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम करें, उसकी नियतें करें और उसको शुरू करें जो बाद में भी जारी रहे। बस लोग कहते हैं हमारे मरने के बाद ये कीजिए, वो आप ना भी कहेंगे तो फिर हो ही जाना है, पर आप और मैं अपने माल, अपने जेवर, अपने घरों के लिए जो डिसाइड कर सकते हैं वो ज़िंदगी में कर सकते हैं। मरने के बाद तो बस 1/3 आपका है, उसमें से आप जो भी करना चाहें। अब होगा क्या कि किताब बंद हो गई, क़यामत का दिन आ गया, इक़रा किताबक, पढ़ो अपनी किताब को, कफ़ा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज के दिन तुम अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफ़ी हो। ज़िंदगी में अक्सर इंसान दूसरों का बड़ा हिसाब लेता है, इवन अच्छे काम करने वालों का भी हिसाब लेता है कि इनकी नीयतें क्या हैं, ये मुनाफिक तो नहीं, इनके कॉल और अमल में कोई तजाद तो नहीं, अच्छा इनके बच्चे क्या करते हैं, इनके मियाँ साहब कैसे हैं, इनके भाई बहन ऐसे, यानी सिर्फ दीन वाले का नहीं, उसके पूरे घर वाले का, घर का और फैमिली ख़ानदान का भी एहतसाब करते हैं। और हमारे गुमान में होता है कि चूँकि ये दीन वाले हैं तो इनके तो पूरे ख़ानदान में बस सब वलीउल्लाह होंगे। कोई बेचारा अगर कहीं अपने घर में दीन की कोई क्लास, कोई बात शुरू कर दे तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, अच्छा जी इनके तो घर में क्लास होती है तो कल रात शादी में ये क्या कर रहे थे, है ना। तो दूसरों का हिसाब छोड़िए, अल्लाह कहते हैं आज आप अपना हिसाब लेंगे। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो हिदायत पाएगा तो बस उसका फ़ायदा तो उसके अपने ही नफ्स को है। अगर आज इस वक्त सब्र और जबर करके या मोहब्बत और ख़ुशी से इस बात को सुनने के लिए आप बैठे हैं तो इसका फ़ायदा आपको होगा इंशाल्लाह। वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो भटकेगा उसकी गुमराही उसके ऊपर है। लेकिन एक बात याद रखना, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला बोझ नहीं उठाएगा बोझ किसी दूसरे का। आप देख रहे हैं, तज़िरु, फिर वाज़िरा, फिर विज़र, एक ही मादे यानी एक ही रूट से तीन लफ्ज़ से बता दिया कि दूसरों की उम्मीद पे मत आना। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथा रसूला, और हम किसी बस्ती पे अजाब देने वाले हुए ही नहीं जब तक के रसूल ना भेज दें। यानी हुज्जत तमाम होने के बाद कोई ना माने तो फिर पकड़ाती है। पहले अल्लाह किसी सिखाने वाले को भेजता है, फिर कोई ना सीखे या सीख के अमल ना करे तो पकड़ उसके बाद होती है। इसीलिए अब आगे आयत 16-17 में कौमों पर अजाब इतमामे हुज्जत के बाद आता है। कोई उस्ताद पूरी बुक पढ़ाए बगैर उस किताब का टेस्ट नहीं लेता। आधी किताब पढ़ाई और टेस्ट पूरी का ले लिया जाए तो ये जुल्म है। यहाँ ये बात है, हम सब अपने ऊपर सोचे, क्या हम पे इतमामे हुज्जत हो गया? अल्लाह ने इसबाब दे दिए। आज दीन सीखना कितना आसान है, आप एक क्लिक पे पूरी बुक डाउनलोड कर लेते हैं। तो लिहाजा इस वक्त तो इंसान को उज़र से बचना है। और अब जो कौमों पे अजाब इतमामे हुज्जत के साथ आता है, इसमें अल्लाह ताला ने कौम नूह की भी बात करके, यानी बिल्कुल शुरू के लोग थे, व इजारत ना, और जब हम इरादा करते हैं कि हम हलाक करें किसी बस्ती को, हम हुक्म दे देते हैं उसके दौलतमंदों को। हुक्म देने से मुराद ये है कि ज़ुबाने हाल से वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, क्या कि वो नाफरमानी करें इसमें, फिर साबित हो जाती है उन पे बात, फिर हम उनको बिल्कुल हलाक कर देते हैं। यानी हर दौर में बड़े लोग, पैसे वाले लोग, रुतबे वाले, और दुनिया में बहुत जो इन थे उन्हीं की तरफ से रिएक्शन आता था। आगे आयत नंबर 18-22 में बहुत ही प्यारे तरीके से दुनिया के चाहने वाले और आखरत के तलबगार में जो फ़र्क है वो बयान किया जा रहा है। मन का नयुरीदुलाजिला, और जो कोई जल्दी मिल जाने वाली इस दुनिया का इरादा करता है, हम भी उसको जल्दी से दे देते हैं इसमें से, लेकिन क्या देते हैं? जो वो चाहता है नहीं, माँ नशा, हम जो चाहते हैं वो देते हैं। किसको देते हैं? हर एक को दे देते हैं। नो लिमन नुरी, जिसको हम चाहें। हाँ बाद में, लेकिन जहन्नुम उसका ठिकाना है जिसमें उसको दाखिल किया जाएगा बड़े बुरे हाल में धुतकारे हुए। इसके बरक्स व मन अराद अल आखिरा, और जिसने आखरत का इरादा किया, फिर उसकी कोशिश भी की, कैसी कोशिश? सायहा, जो हक था। यानी कोशिश एक होती है कि आपने खाना पकना रख दिया, आधा गोश्त गला और चूल्हा बंद कर दिया, खाएगा कोई? तवे पे रोटी डाली, चूल्हा बंद कर दिया, नहीं। चीज़ उसकी डिज़ायर्ड और उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट तक हो तो काम देती है, अदरवाइज बेकार है। कुछ लोग आखरत की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन एज नहीं, इतनी इतनी नहीं कर रहे जितनी करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि किसी रेसिपी में लिखा हो कि 220 टेम्परेचर पे इस चिकन को 45 मिनट रखना है। अब पकाने वाली दो तीन कामों में से एक क्या कर दें कि टेम्परेचर वो कम कर दें 120 पे, और जो कुकिंग टाइम है उसको कर दें 20 मिनट, तो खा लेंगे, पक जाएगा। पकती हुई निहारी कच्ची आटे वाली खाई जाती है। हम में से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आखरत जन्नत जहन्नम सोच रहे हैं, लेकिन सायहा नहीं हो रहा, उसका वो हक नहीं अदा हो रहा। आप किसी भी पेपर को फिल करते हैं, कोई फॉर्म फिल हो रहा है, कोई ऑनलाइन पे कोई चीज़ ले रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, दे रहे हैं, आप देखते हैं कि जब तक हर कैटेगरी में जाकर लिख ना दें फॉर्म आगे नहीं जाता। सिर्फ एक हिस्से का फ़र्क आ जाए वो कहते हैं आपका कार्ड ही नहीं प्रोसेस हो रहा। इन सारी मिसालों से समझिए और ख़ुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी आखरत को पाने की कोशिशें और तमन्नाएं उतनी हैं जितनी रिक्वायर्ड है? और अगर कम है तो तेज़ी कर दीजिए, अल्लाह आपकी मेरी मदद कर दे। और ईमान की भी शर्त है साथ में, तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला खूबसूरत तरीके से बात करते हैं, और साथ ही फिर आगे तौहीद की बात की जा रही है।